जितने तीर्थ है भारतवर्ष में, उस क्षेत्र को तीर्थों के राजा माना गया। राजा कहने से आप समझ जाते हो कि कोई साधारण तीर्थ है ही नहीं, तीर्थों के राजा है। आप अनेक तीर्थ भ्रमण करते हैं, लेकिन तीर्थ राज आना की विशेषता है, क्योंकि वहाँ पर अब समय नहीं था। मैं आया था आप लोग के पास, लेकिन आप लोग इधर उधर हो गए थे, नहीं तो वहीं पर हम कुछ बताना चाहते थे। जहाँ पर आप बस रुका था, सामने किला देखे ना आपने, बहुत बड़ा वो किला, के अंदर अक्षय वट था। अभी आप लोग होते तो मैं आपको ले भी जाता अंदर, बड़े सुंदर दर्शन है, अक्षय वट का परिक्रमा करता आपने, लेटे हनुमान है। और उसी से थोड़े दूर आगे जाएंगे सीधा दशाश्वमेध घाट है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था दशाश्वमेध घाट। पहले घाट तो वहाँ था, लेकिन आजकल पानियाँ है नहीं, पानी तो और कुछ दूर चला गया। लेकिन ये दशाश्वमेध घाट सृष्टि के शुरुआत के समय का घाट है। ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर के इसी कल्प के शुरुआत में यहाँ यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, 10 अश्वमेध यज्ञ करके इसी कल्प का शुरुआत किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और इस घाट के ऊपर में प्रसिद्ध उस तीर्थ के अधिष्ठात्र देव श्री वेणी माधव विराजमान है। आप लोग शायद कोई दर्शन किए भी होंगे, थोड़े गली के अंदर है, पास में ही है, घाट के पास में अति प्राचीन वेणी माधव मंदिर इस क्षेत्र के अधिष्ठात्र देव है। तो इस तीर्थराज में हर साल माघ मास में माघ स्नान, 1 महीना का मेला लगता है माघ मेला, और हर चौथे तीन साल के बाद में चौथे साल में कुंभ तो लगता ही है, कभी कभी महाकुंभ लगता है। महाकुंभ लगता है, लाखों संख्या में भारतवर्ष से बाहर साधु संत के समागम होता है, और महीना भर के विशाल मेला होता है। आप लोग सब सुने होंगे, देखे होंगे टीवी, अगर हम कोई प्रैक्टिकल आए भी होंगे, कितने महान ऋषि मुनियों का ये रहने का जगह, महीना दिन यहाँ रुकते हैं, स्नान करने के आते हैं, आते जात करते हैं, जिनको हम जीवन में कभी देखे नहीं सुने नहीं, ऐसे ऋषि मुनि यहाँ आते हैं। प्रयाग कुंभ के विशेष है, और इसका महिमा तीर्थराज का, राजा तीर्थों में इसका राजपद, इसके इतने बड़े पदवी इसको मिलने का जो खासियत है, क्यों? क्योंकि गंगा और जमुना दोनों इधर है, मिले। जितने तीर्थ है, जितने पवित्र करने में प्यूरिफाइंग एजेंसी है, इसमें टॉपमोस्ट है श्री गंगा जी और जमुना जी। एक तो भगवान के श्री चरणोदक है, चरण धोवन जल है, और एक तो भगवान के स्वयं प्रिया है, उनके धर्मपत्नी है। कितने क्या क्या विहार किए हैं जमुना, तुम दोनों के मिलन स्थल, इसलिए तीर्थों के राजा है, है ना? और ज्ञान गंगा सरस्वती तो है लुप्त भाव में। तो इस क्षेत्र को जाने मात्र से ही पाप राशि डर के चले जाते हैं, और जो जाकर के स्नान करते हैं तो उनका तो कई पीढ़ी तक भी उद्धार पाते हैं। तो वहाँ विशेष करके इस प्रयाग तीर्थ में सबसे बड़े महर्षि जो आश्रम थे, आजकल तो मुस्लिम लोग ने बदला दिए, प्रयागराज का नाम बदला करके इलाहाबाद कर दिए अल्लाहाबाद, लेकिन यहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम था, आज भी स्थान है भरद्वाज टीला। आप लोग के पास समय नहीं हुआ, मैं तो जाते देखने के लिए भरद्वाज टीला। जब विगत त्रेता युग में भगवान राम, जैसे ये सप्तम मनु के 28वां चतुर्युग चल रहा है, ऐसे कहा गया है कि यही सप्तम मनु के 27वां चतुर्युग के तृतीया में भगवान राम आते हैं। तो राम जब आए थे विगत कल्पों में होंगे, तो उन्होंने रामलीला तो इतने आदृत है भारतवर्ष में कि कोई ऐसा है नहीं जो भगवान के राम के बारे में नहीं जानता होगा। रामलीला के जो विशेष अंग हैं, भगवान के वनवास, वनवास होने के बाद अयोध्या से चल करके वन गमन करने के लिए अयोध्या से जब निकले तो उनके पिता श्री दशरथ तो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, बाकी माताएं तो इस प्रकार अवस्था में थे, लेकिन सुमंत और बाकी अयोध्यावासी, पूरे अयोध्यावासी बोले हम सब चल पड़ेंगे, कोई नहीं रहेंगे, रोते रोते सब उनका पीछे चले। भगवान राम कितने समझा रहे थे, निकल नहीं जा रहे थे। पहले दिन आ करके वो नदी के पास रहे, उसके बाद दूसरे दिन जब उन्होंने वहां से चले, उस नदी के पास जब रुके, सब वहीं पे रेस्ट लिए, और सुबह उठ करके भगवान राम चल पड़े, उसे सोए हुए थे। और उसके बाद आ करके पहुंचे गंगा से पहले जो सबर राज था, उनका नाम क्या था? निषाद राज गुहक, श्रृंग बैरपुर, वहां आकर एक रात रुके और इस रात्रि में वहां सिंगरपुर में रुक करके दूसरे दिन गंगा पार किए। आप लोग तो ओवरनाइट जर्नी करेंगे, नहीं तो गंगा जी के उस रास्ता पूरा पार कर, जब इलाहाबाद होकर के अयोध्या जाते जाएंगे ना, लखनऊ को साइड करके उस स्थान आता है जहां पर भगवान ने पार किए थे गंगा। तो गंगा पार करने के लिए तब तो कोई घाट था नहीं, ऐसा ब्रिज भी था नहीं, लेकिन वो जो किरात निषाद सब थे वो लोग नाव चलाते थे, तो भगवान रात के यहाँ रुके। निषाद राज को वहाँ उनके मित्र थे वो है निषाद राज ने, वहाँ रुक करके दूसरे दिन उनको कहे कि मुझे नदी पार कराने की व्यवस्था करो। तो रामचरितमानस में केवट प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है, यद्यपि वाल्मीकि में इसका वर्णन नहीं है। तो जैसे भी नाव जब पारी करने आए तो भगवती सीता प्रथम बार गंगा जी के दर्शन की अपने जीवन में। भगवान राम तो पहले भी गंगा दर्शन कर चुके थे जब विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, लेकिन सीता देवी फर्स्ट टाइम गंगा जी की दर्शन की और गंगा पूजा की वनवास की जाते समय में। यद्यपि उनके पास कोई व्यवस्था था नहीं, पूजा के उपकरण द्रव्य था नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके गंगा जल से गंगा को अर्पण करके, गंगा स्नान करके गंगा जी को, गंगा माता को प्रार्थना की। वाल्मीकि रामायण में विशद वर्णन है सीता माता के गंगा प्रार्थना, गंगा पूजा। गंगा माता को प्रार्थना करके ही वर मांगी, मैं पति के घर में आया, मेरे पति के ऊपर ऐसी समस्या है, हे माँ मेरे ऊपर कृपा करके, ऐसे कृपा करो ताकि मैं मेरे पति के साथ रहूं और ठीक ठीक 14 साल पूरा करके फिर वापस आ जाए। इस प्रकार से गंगा माता को प्रार्थना की थी, गंगा पूजा की थी और गंगा पार किए। पार करके फिर पैदल में चले, कुछ किलोमीटर पैदल में चलने के बाद आ करके इलाहाबाद पहुंचे। आज के इलाहाबाद तो प्रयागराज था, वहां कोई लोग नहीं रहते थे, कोई सिटी टाउन था नहीं, केवल एक साधु आश्रम था। उसमें श्री भरद्वाज मुनि रहते थे, प्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज, उनका वहीं आश्रम था और उनके शिष्य लोग रहते थे। भरद्वाज जी भगवान राम सीता और लक्ष्मण को अपने अतिथि रूप में स्वागत किए, बड़े आनंद से उनको स्वागत करके वहाँ रखे, उन्होंने संगम में स्नान किए और यहीं रह करके भरद्वाज जी से भगवान राम ने सलाह किए कि हे मुनिवर, आपने तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत पुराना है, बहुत साधना किए हैं, भारतवर्ष में अनेक जगह घूमे हैं, तो मुझे पिताजी ने 14 साल वनवास की ड्यूटी दिए हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा वन का कौन सा जगह मैं कैसे वनवास काल में बिताऊं, कोई इसे उचित जगह मुझे बताइए। इस प्रकार से पूछने से भरद्वाज ऋषि सबसे पहले बोले, आप मुझे पूछ रहे हैं मैं कहाँ जाऊं, किस रास्ता में जाऊं, कौन सा वन मेरे लिए उचित होगा, मुझे बताइए। भरद्वाज बोले, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा जगह है चर अचर जहां आपको ज्ञात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप मुझे पूछ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा, क्यों आप पूछ रहे हैं, मुझे पता है कि आप सब पता है और आपको ही पता है, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, जान करके तब मैं बता रहा हूं, सुनिए, जब मेरे मुख से आप सुनना चाहते हैं तो आप तो गंगा पार करके आए इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से ही बिहड़ जंगल शुरू होता है, वन प्रदेश, और विशेष करके आप उसी तरफ जाएंगे पश्चिम तट पर जहाँ जमुना जी बहती है, जमुना जी पार करके, पार करने के बाद जो वन राजी शुरू होता है वहाँ तो प्राय कोई सामान्य लोग जाते हैं, और वहीं से विशाल वन शुरू हुआ, सच को तो आज भी है, वहीं से लेकर के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बॉर्डर तक वो जो जंगल नासिक महाराष्ट्र, तो वही दंडक अरण्य है, चित्रकूट से आगे से दंडक शुरू हो जाता है, वो उसी से बोले, ये विशेष इतने बड़े अरण्य में ये जो क्षेत्र है जमुना पार करके केवल 100 किलोमीटर आप लोग का 120 किलोमीटर है, 50 कोस करीब है, इतने क्रोस जाने के बाद इस जंग तभी भी जंगल था पूरा, तो यहाँ एक ऐसे वन आता है, इतने सुंदर सुंदर शैलकूट पर्वत है, स्वर्ण में निर्मित, चांदी में निर्मित, तमिल अनेक अनेक प्रकार के धातु से ये पहाड़ निर्मित है, अति सुंदर वन है, उसको चित्र विचित्र उनके दृश्य को देख करके ऋषि मुनियों ने उस स्थान का नाम चित्रकूट रखे हैं। कृष्णा कृष्ण, तो इस प्रकार भगवान राम को इस चित्रकूट को आने के लिए, इस यहाँ करके वनवास के समय बिताने के लिए भरद्वाज मुनि ने अपने सलाह दिए थे, ये उनका कंसल्टेशन प्रयाग में हुआ था भरद्वाज आश्रम में। उसके बाद में प्राय हर एक युग में तो तीर्थराज प्रयाग में मेला और स्नान के उत्सव होता ही है, हमारे लिए प्रयाग एक विशेष प्राधान्यता रखता है, क्योंकि हमारे परंपरा के भगवान उपास्य देव इष्ट देव श्री कलिपावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु, जब उनके जीवन काल में एक बार वृंदावन भ्रमण में गए थे, वृंदावन जाते समय में प्रयाग होकर गए थे। प्रयाग में जब पहुंचे थे तभी माघ नहीं था, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन वृंदावन पहुंचे थे। कार्तिक के लास्ट 5 डेज ऐसा कुछ होगा कि कुछ होगा, कार्तिक महीना ही होगा, इसमें इलाहाबाद में थे महाप्रभु कार्तिक मास में। तो ऐसे वर्णन आता है कि महाप्रभु उनके साथ में एक उनका सेवक था बड़भद्र आचार्य ब्राह्मण था, उनको साथ में लेकर के स्नान करने गए संगम में। स्नान करके कीर्तन किए, कार्तिक महीना में तब जानते हैं बहुत लोग स्नान भी करते हैं, है ना, कार्तिक महीने में स्नान का महत्व है। तो हजारों संख्या के लोग प्रातः स्नान में आए थे, लेकिन पहली बार उन लोग ने ऐसे रूप के एक महापुरुष को देखे, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखे जो स्नान किए संगम में। जितने लोग दूर दूर से थे सब आगे खींचे आगे उनको देख करके, क्यों कि महाप्रभु का रूप ही ऐसा था, बड़े लगभग 7.5-8 फीट के ऊंचाई था उनका। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वंभरो दिज भरो जुग धर्म पाड़ो वंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो। आजानुलंबित भुजो, इतने लंबे लंबे हाथ था, घुटने से नीचे तक जाता था, लेकिन नीचे हाथ करते नहीं थे, ऊर्ध्वाभ शरीर कैसा था, कांचा सोना का जैसा, मोल्टेन गोल्ड, सोने तो जैसे कलर, सोने को पिघला दो पिघले सोने के जैसे रंग था। कनका बता दो और आयत नेत्र, कान तक लंबे लंबे आंख था, हमारा तो यहीं तक है, उनका यहां तक था आंख लंबा, और ऐसे रत्नारे लंबे लंबे आंख, विशाल इतने लंबे लंबे ऊर्ध्वबाहु, और इसमें नृत्य ठाणी, नाचते नाचते दोनों आंख से गंगा जमुना की धारा के जैसा आंसू बह रहा था, और हरे कृष्ण कीर्तन करते करते जब उन्होंने घाट से जाते थे, जितने दूर दूरांत से आसपास के गांव से जितने लोग जहां जमुना जी से गंगा से एक घाट से वो घाट स्नान करते थे, स्नान टान बातचीत छोड़ करके खींचे आए उनके ओर। बोले शाम तो डेली करते हैं लेकिन ये मूर्त कभी देखे ही नहीं, ये मूर्त कैसे आ गया, कैसे है, क्या है, भागे कोई गामछा पहन करके, कोई आधा नहा करके, कैसे जैसे भी तीसरी अवस्था में भागे, और इतने लोग भीड़ हो गया। कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं कि हर साल आषाढ़ सावन में गंगा जमुना में अधिक जल आकर के बाढ़ होता था, तभी जमाने में नदियों में डैम नहीं हुआ करते थे, तो अबाध जल बहता था और बाढ़ होता था, लेकिन आज इस कार्तिक महीना में जैसे बाढ़ हुआ बिना बारिश में, ऐसा बाढ़ तो ना कोई देखा ना सुना। इतने लोग पूरे गंगा जमुना के जो क्षेत्र है आसपास में, पूरा लोकारण्य हो गया, लख लख संख्या में लोग, बाढ़ के कोई लोग ज्यादा आ गए, बाढ़ क्यों ना, जितने लोग आए आए तो खींचे महाप्रभु देखने के लिए, लेकिन मंत्र मुग्ध हो गए थे देख करके, वो सब आपने आपको भूल गए थे कि आए आकर उनको देख करके सभी के दोनों बाहु ऊपर उठ चुका था। प्रत्येक लोग जो आते थे देखते ही उनके हाथ ऊपर उठ जाता शरणागत भाव से, और मुंह से भगवत नाम निकल रहा था सभी का। लाखों संख्या में लोग ऊर्ध्वभाव होकर के हरिनाम कीर्तन करते और रोते और चलते चले जाते उनके पीछे पीछे, उसी को देखकर बोलते हैं तो बाढ़ आ गया, प्रेम बन्या, ये कोई पानी के बड़ा बाढ़ नहीं है, किस बाढ़ है, प्रेम बन्या, भगवान के विशेष महिमा है, उनको प्रेम दान करने के लिए इतने दिन प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, इतने चैंटिंग मंगला आरती फॉर रेगुलर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंट इमीडिएट दे सकते हो, दे दिए। लाखों लाखों को प्रेमदान करिए, सब भाव विभोर होकर के नृत्य कीर्तन करते हुए चले, भूल गए कि घर में जाकर के हमको ब्रेकफास्ट करना है, कोई ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, भूल गए सब। ऐसे प्रेम की बनिया लाए थे महाप्रभु इस इलाहाबाद में। तभी समय में श्री रूप और उनके छोटे भाई अनुपम, वो इस्तीफा दे करके बंग सरकार से रेजिग्नेशन करके घर वापस आ चुके थे और पता लगा रहे थे कि हम भी जाएंगे कि महाप्रभु से भेंट हुआ था। महाप्रभु बोले मैं जाऊंगा वृंदावन, वृंदावन कब जाएंगे कब करेंगे पता लगा रहे थे। तभी जमाने में फोन भी नहीं था, ईमेल भी नहीं था, पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था। पत्र लिख करके भेजना का एक ही उपाय था, पत्र लिखो, और पेन पेपर भी नहीं था, लेखनी और भोजपत्र से लिखना पड़ता था। लिख करके एक आदमी को देते, वो जाता था घोड़ा में चढ़ करके वहां देता था, फिर कोई रिप्लाई दे उसे लेकर लेकर आता था। इस प्रकार के पत्रालाप करते कि पता चला महाप्रभु वृंदावन के लिए जाने वाले हैं और खबर आया कि गए। जिसे वृंदावन चल गए खबर आया तो रूप और उनके छोटे भाई अनुपम सनातन तो अभी थे, आए नहीं थे, तो निकल पड़े वो दोनों भाई। निकल कर आ करके बंगाल से मिले थे उनको इलाहाबाद में, इलाहाबाद में मिले थे वो। जब मिले तब तक महाप्रभु वृंदावन से वापस आ चुके थे। महाप्रभु वृंदावन जाके वापस आए और तभी उनको खबर मिला, लेट हो गया उनका आते आते, लेकिन इलाहाबाद में भेंट हुआ था, ऐसे वर्णन है। तो उनको रूप और सनातन के साथ जब भेंट हुआ था, वही बेणी माधव मंदिर आते थे महाप्रभु शाम करके, उनके पीछे हजारों लोग आते थे। इतने भीड़ और कीर्तन को देख करके रूप सनातन को पूछना नहीं पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा, अपने आप पता चल गया। कोई बहुत महिमान्वित व्यक्ति होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनको इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता, उनके बारे में बताना जरूरत नहीं होता, वो स्वयं प्रकटित स्वयं प्रकट प्रभाव रखते हैं। जैसे कभी सूरज उदय होने से किसी को बताना पड़ता है, देखो सूरज है उसमें इतने लाइट निकलते, बताना पड़ता है नहीं, ऑटोमेटिक सब जानते हैं। उनके प्रकाश के प्रभाव ऐसा है कि सभी ऑटोमेटिक जान जाएंगे उनको। तो इस प्रकार महाप्रभु के उपस्थिति ही ऐसे विशेष था कि रूप सना रूप और अनुपम को जान गए यही महाप्रभु हैं। जब महाप्रभु बैठे थे बड़ी माधव मंदिर के पास में दशा समृद्ध घाट में, दूर से जा करके उनको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, मुंह में घास के तिनका लेकर के प्रणाम किए थे। तभी जाते समय में इतने भीड़ लोगों का हुआ था, वहाँ पे जमुना के उस पार एक गांव है जिसका नाम है अड़ाइल ग्राम, आज भी वो ग्राम है। आप लोग शायद स्नान करते हुए किसी का नज़र पड़ा होगा, बहुत बड़े एक मंडप बना रहा है, बन रहा है घास फूस का, वहीं अड़ाइल ग्राम है, बल्वाचार्य की बैठी हुई है। तो बल्वाचार्य सुने कि इतने बड़े महापुरुष आए हैं, वो पता लगाए थे लेकिन वृंदावन चले गए। वापस जब आए तो फिर बोले ये मौका छोड़ना नहीं, खोना नहीं चाहिए। उन्होंने आए थे उनको निमंत्रण करके उनके घर में ले जाने के लिए। ये सत सदाचारी सद गृहस्थ होते हैं, साधु सन्यासी को अपने घर में भोजन के लिए बुलाते हैं। तो आचार्य वल्लभ थे, वल्लभाचार्य, उनको जब पता चला इतने बड़े महापुरुष हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, लोगों हजारों लोग लाखों लोग को मुक्त करते हैं, तो इसलिए उन्होंने नौकर पार करके जमुना पार करके गंगा पार करके दशा समृद्ध घाट में आकर के उनको भेंट किए, और केवल इसलिए आए थे उनको निमंत्रण करके अपने घर में लेने के लिए, भिक्षा के लिए। तो रूप सनातन जाकर के मुंह में घास के तिनका लेके प्रणाम करते थे, उसी समय में बल्वाचार्य प्रवेश किए। बल्वाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, और यहाँ के इस क्षेत्र में सबसे बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। बनारस में पढ़े थे, काशी के पंडित थे, तो जब महाप्रभु को मिलने आते थे, आकर के महाप्रभु के पास बैठ करके दोनों बातचीत करते थे, उसी समय में ये रूप और सनातन जा करके दंडवत प्रणाम किए। थोड़ी दूर से महाप्रभु की नजर पड़ा, दूर से दोनों प्रणाम कर रहे हैं, बल्वाचार्य बैठे थे वो भी देखे, दो व्यक्ति दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, मुंह से घास के तिनका लिए हैं, बड़े विनम्रता भाव से प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो भी देखे बोले कौन है इसे प्रणाम करते। तो महाप्रभु बोले कि रूप ये आचार्य वल्लभ है, उनको ही प्रणाम करो। महाप्रभु के आदेश सुनकर के तुरंत उठ करके धड़पड़ दंडायमान दंडवत जैसे गिर करके उनको ही प्रणाम किए। उनका ऐसा विनम्रता, ऐसा प्रणाम और ऐसे मंत्रोच्चारण करके जो स्थिति भाव से प्रणाम करते देख करके आचार्य वल्लभ गदगद हो गए, उठ करके उनको आलिंगन करना चाहते थे। और स्वामी इतने अच्छे व्यक्ति है, इतने विनम्र है, इतने अच्छा व्यक्ति है, उनको दंडा की तरह गिरे उनको उठाना जा रहे थे, और वो बोलते थे नहीं, पीछे पीछे जा रहे थे, नहीं 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 नहीं, आप बड़े पंडित थे, हमका मत आइए मत आइए, छूना नहीं चाहते थे, वो पीछे हटते थे, बल्वाचार्य आगे बढ़ते थे। आचार्य पीछे मुड़कर देखे बोले ये कौन है कृष्ण चैतन्य जी, ये आपको प्रणाम कर रहे दो व्यक्ति, अच्छे भले आदमी लगता है, रूप ऐसा लगता है, गुण ऐसा लगता है उनका, बहुत शिक्षित सभ्य व्यक्ति लगते हैं, और मुझे भी प्रणाम किया आपके कहने पर, मैं उनको आलिंगन करना चाहता हूं, लेकिन वो पीछे भागते क्यों है। तो ये सुन करके दोनों कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम नीच जाति हैं, नीच कर्मी है, आप उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, हमको मत छूए मत आइए, दैन्य भाव से पीछे भागते थे। बल्वाचार्य बारम्बार कृष्ण चैतन्य को बोली क्या है आपके परिचित है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले देखो आचार्य वो बहुत अच्छे, मैं जानता हूँ उनको, वो बेचारे दैन्यता के कारण बड़े विनम्र होते हैं, और आप इतने बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण है, तो इसलिए आप उनको स्पर्श करना ठीक नहीं होगा, ठीक है आपको प्रणाम किया आप आ जाइए बैठिए ना, क्यों ना वो आपके जैसा उच्च कुलीन ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ब्राह्मण नहीं है, पवित्र नहीं है, कैसी बात आप कर रहे हैं, जिनके मुख से अनवरत हरिनाम निकल रहा है वो कैसे पवित्र हो सकता है, वो कैसे दूषित हो सकता है, वो कैसे कुपात्र हो सकता है, वो कैसे कुलीन नहीं हो सकता है। तो ये श्लोक उन्होंने पाठ किए, जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत समचतो करिया, जद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इस श्लोक को सुनकर के आचार्य मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने भी एक श्लोक दान किए। तब उन्होंने उनको ही बुलाए पास में, बोले आओ। तो बल्वाचार्य फिर उन दोनों को के साथ रूप और अनुपम के साथ महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण किए। महाप्रभु जमुना पार करके जब उनके घर में जाते थे प्रसाद के लिए, ऐसे वर्णन आते थे कि जमुना पार, आप जैसे आप जमुना पार करके स्नान करने संगम में जा रहे थे, आपको डर लग रहा था ना, अच्छा लग रहा था, जब थोड़ा पानी झपका रहा था लगता था कि नौका डूबते ना जाए, डूबेगा नहीं क्योंकि मोटरबोट तो होता, मोटरबोट था क्या, नहीं इसे इसे चला कर जाते थे, और आजकल तो पानी बहुत कम है, तभी विशाल जमुना था और उसमें महाप्रभु जो जा रहे थे, जमुना जी को देख करके महाप्रभु का भाव उद्रेक हुआ, जमुना जी को देख कर भाव उद्रेक हुआ, नौका के ऊपर नृत्य कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, महाप्रभु तो विशाल शरीर है, नाचने लगे, नौका बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा था, पानी झपकी खाकर अंदर गिर रहा था, और नाविक बोल रहा था अरे भैया आपको तो तैरना आते कि नहीं, तो मैं भी मरूंगा, नौका डूबेगा, अरे रुक जाओ, वो काहे को सुने, महाप्रभु ने कहा कि तो ऐसे कर रहे, इस प्रकार अवस्था में कोई रोके तो महाप्रभु तो रोकने वाला तो है नहीं। तो जब बिल्कुल पानी आकर घुस रहा था, वो नाविक बोला कि डूब जाएंगे हम, मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। तब सभी जब रोने लगे, महाप्रभु बोले क्यों रो रहे हैं, कैसे डूब जाएंगे, ये हरि नाम आदमी को समुद्र से पार कर, भव संसार से पार कराता है, ये नदी से पार नहीं करा सकता, ये नौका पार कराएगा। तो ऐसे इतने भरोसा महाप्रभु ने दिए हरिनाम कीर्तन के ऊपर। कीर्तन करते करते इस नौका के ऊपर नाचते नाचते उन्होंने पार किए थे, जमुना जी पार किए थे। जब भी जमुना स्नान करते महाप्रभु हमेशा एक श्लोक अवश्य गाते हैं। शायद आज लोग, आज आप लोग श्लोक गाए होंगे, सर प्रभु जी बताए होंगे। जब भी जमुना देखते हैं, जमुना स्नान करते हैं, महाप्रभु ये श्लोक पाठ करते हैं और फिर जमुना स्नान करते हैं। स्नान करने के पहले, स्नान करने के बाद, ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है श्लोक, चिदानंद भानु सदानंद सूनु पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानं लवित्री जगत खेम धात्री पवित्रीं क्रियान्नो बपुर मित्र पुत्री। श्री जमुना जी सूर्यदेव की बेटी है, मित्र पुत्री, और चिदानंद भानु है। चित सूर्य के समान है, सदानंद सुनो, सदा नंद नंदन को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करती है। जगत खेम धात्री, पूरे जगत के लक्ष्य को साधन करने वाली, प्रत्येक के उद्देश्य को साधन करने में समर्थ। पर प्रेम पात्री, परम प्रेम को दान करने वाली, परम प्रेम के दात्री हैं। अघानाम लवित्री, अघ मतलब पाप, पाप को बिल्कुल धुल डालेगा और हमको पवित्र करो, हम आपके स्नान कर, आपने स्नान करना चाहते हैं, स्पर्शन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, पवित्र क्रिया में हम लोग को पवित्र करो। ये गंगा और जमुना, इन दोनों को शास्त्रीय भाषा में, ये दोनों के जल को साधारण जल नहीं माना गया, कई जगह में उसका उल्लेख प्राप्त होता है शास्त्र में। रूप गोस्वामी तो यहां तक कहे हैं कि ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीर धर्मे, ये जो पानी की तरह बहता है, हम जिसके ऊपर स्नान करके आए, वो पानी नहीं, वो क्या है, बोले नीर धर्म, जल के धर्म से प्रवाहित है, लेकिन है क्या ना, ब्रह्म द्रव मेल्टेड ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म द्रवीभूत हो जाए तो ये जो जल होगा मेल्टेड फॉर्म में, ये गंगा जी या जमुना जी है, इसलिए ब्रह्म द्रव ये साधारण जल नहीं है। उनमें से थोड़ा फेन बुदबुद देख करके हम इसे सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो साधारण जल कैटागोरी के नहीं है, सख्यात ब्रह्म द्रव है। तो इसी में स्नान करना और बाकी स्नान करना ऐसे संभव नहीं। तो आज का प्रातःकालीन आपका जो स्नान है, ये स्नान को आप डेली दो तीन बार स्नान करते होंगे, यही स्नान के साथ समझ मत, क्योंकि ये जल जल नहीं था, ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म था और उसके ऊपर में श्री पुरुषोत्तम मास का अंतिम त्रयोदशी तिथि था। तो स्थान काल और पात्र, ये तीन प्रकार के संगम हुआ था। स्थान था महान तीर्थराज, काल था पुरुषोत्तम मास, और पात्र थे आप लोग भगवत नामकारी भक्त वृंद। तो इसलिए तीनों संगम यही हुआ था। तो आज का सुबह का जैसे आपका शुरुआत हुआ, तो सुबह से ही आप सारे पाप ताप आज नष्ट करके आए, पापता मिटने के बाद में जो 10 मिनट दिक्कत हुआ या अभी और दिक्कत होने वाला है उसको आपके कर्म फल मत मानिए, ये तो भगवत इच्छा मानिए। भगवान श्री राम चाहते हैं कि मेरे भक्तगण आए हैं, थोड़ा उनको लगे तो चस्का कि मैं भी कितने 11 साल इधर रहा, वो कुछ 11 घंटा तर है, वो इसे फर्स्ट क्लास सारण मंडल में रहेंगे खाएंगे। तुम तो यहाँ वनवास किया था, कोई अटैच बाथरूम कमरा था नहीं, एसी कमरा था नहीं, श्रीधर धाम था नहीं, है ना नहीं? प्रभु पैदल में नाम प्रभु बता रहे थे, वो हम लोग तो एसी बस में 2x2 में आए, भगवान तो पैदल में आए। अभी हम बताएंगे कैसे प्रकार उनका आना हुआ। केवल इस दशाश्वमेध घाट इस प्रयागराज का महिमा कह रहा था कि हमारे इष्ट देव श्रीमन महाप्रभु आकर के स्थान को कैसे धन्याति धन्य किए थे, इस स्थान को जहाँ पर आज आप लोग स्नान किए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी कलि काल के शुरुआत में इस क्षेत्र को पावन कर दिए थे, प्रेम वन्या से प्लावित किए थे और वहाँ 10 दिन रूप करके श्री रूप को शिक्षा दिए थे। सिरूप शिक्षा जिनके आधार पर सिरूप गोस्वामी ने इतने शास्त्र भक्ति के सामर्थ्य सिंधु आदि लिखे, इसका सट भर में शिक्षा उन्होंने वहीं पे दिए थे, वहीं रूप शिक्षा पा था। 10 दिन तक महाप्रभु वहीं रुके थे। आप लोग 10 बजे स्नान करके वापस आ गए लेकिन वो 10 दिन तक रुके थे। तो मैं कहता था कि उसके महिमा तो पहले से था, क्योंकि जब भगवान श्री राम अपने पत्नी और भाई के साथ आए गंगा पार करके पैदल में चलते चलते आए, पदत्राण भी नहीं था क्योंकि वनवासी थे। जब वनवास दिया गया था उनको बन के रहने जैसे पोशाक था, ऐसे राज के पोशाक निकाल दिया गया था, अलंकार आदि निकाल दिया गया था, पदत्राण बाकी सब नहीं किस था उनके पास में, बिल्कुल बड़कड़धारी इस प्रकार 10 में आ रहे थे, बिना पदत्राण में आ रहे थे। भगवान के चरण इतने सुकोमल था, इतने सुकोमल था, जिनको सीता जी भी डरती थी हाथ लगाने के लिए कि कष्ट ना लगे, इतने मुलायम था। और ये श्री चरण अति कोमल चरण आज बिना पद त्राण से इस कुशकंटक रास्ता पर, आप तो बिना पद त्राण चलते ही नहीं कैसे पता चलेगा, शायद कल सुबह आपको परिक्रमा में ले जाएंगे श्री कामतनाथ की तो थोड़ा आपको पता चलेगा। तो भगवान ने पूरे अयोध्या से चल के आए थे इस प्रकार। जब उन्होंने वनवास के उनको आदेश हुआ था, आदेश होने का जो समय था किस समय था, पहले बोल देते तो ठीक था। जिस दिन पूरे राज्य में घोषणा कर दिया गया कि दशरथ महाराज ने सारे जगह में एडवर्टाइज कर दिए कि मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद में अभिषेक करना चाहता हूं और उनके राज्याभिषेक होगा, इस बात को सुनकर के जितने पात्र मंत्री पारिषद थे इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि हम सभी चाहते थे लेकिन वो क्या कहें, आज आप स्वयं कहे। जब उन्होंने पूछे कि अच्छा तो तिथि निर्णय किया जाए, वशिष्ठ जी को पूछे दशरथ जी ने कि मैं राम को इस युवराज पद में देना चाहता हूँ, कोई उचित तिथि, कोई मंगलमय तिथि दिन, कोई अच्छा डेट फिक्स कीजिए कौन से दिन करेंगे। वशिष्ठ खड़े होकर बोले, हे राजा दशरथ आप क्या कहते हैं, राम के लिए कोई तिथि निर्णय करना पड़ता है। बोले क्यों? बोले कोई भी तिथि अगर राम के कार्य में आ जाएगा वो तिथि धन्य हो जाएगा, राम के धन्य। बोले एनी डे अगर भगवान राम के कार्य में आ जाए तो धन्य धन्य हो जाए, वो तिथि क्या, अच्छा तिथि क्या देखते हैं, राम इतने अच्छे हैं उनको कोई तिथि कोई अलंकार कोई शुभ लग्न नक्षत्र उनको अच्छा नहीं कर सकता। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, ये स्वयं मंगल के भवन है, उनके लिए मंगल की तिथि बार टाइम क्या देखना है न, फिर बस आज ही करो, कल रेडी करो, मैं सामग्री रेडी करता हूँ, कल करना है, कल करना है करके स्वयं वशिष्ठ बड़े जल्दी से जा करके स्वयं जा करके मार्केटिंग करने लगे, क्या क्या सामग्री चाहिए सब अभिषेक के लिए, पूजा के लिए, स्वयं चले गए। कभी नहीं जाते थे, अपने किसी को भेजते थे, लेकिन आज इतने प्रसन्नचित थे, इतने खुश थे कि राम के लिए काज करना है, इसलिए स्वयं चल पड़े। और बाकी लोग जहाँ जहाँ जो जो सुने, पूरे अवध राज्य में जितने भी लोग जिस वर्ण के छोटे बड़े जो भी सुने, सब लग गए अपने घर सजाने के लिए, अपने बंधु बांधव को खबर देने के लिए, अरे आ जाओ कल सुबह देखना पड़ेगा। अब आंख से एक जब आंख उठाए तो एक बार देख लेना था राम अभिषेक, सारे जगह को खबर गया, सब अपने उल्लास करने लगे, घर सजाने लगे, उत्सव की व्यवस्था करने लगे। केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या की दौरते तुम जितने उनके और दूर दूरांत बंधु बांधव थे, सब कोई भेंट दक्षिणा लेकर आने लगे, रात रात बैलगाड़ी हाथी घोड़े चढ़कर आने लगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इतने उत्साह था, इतने आनंद था, इतने उमंग था कि लख लख लोग रात दिन चल पड़े कि लेट ना हो जाए, काली होगा, फिर चांस नहीं छोड़ना चाहिए, हम उनको दर्शन करेंगे, ये मंगल कार्य में हम भी भाग लेंगे। सब चले थे रात दिन मिला करके, और सभी के घर धो पोछ करके रंगोली करना, ये करना, और सब चित्र कर सब चला रहे थे रात दिन। और अब सबके पता है उसी रात में जो साक्षात मंगल के भवन है उन्हीं के लिए अमंगल हो गया, और रात में बिल्कुल बदल गया प्रोग्राम। दशरथ महाराज अर्धरात्रि में रोते रोते आपने इष्टदेव सूर्य भगवान को बोले, हे सूर्यदेव, मैं आपके कुल हूँ, आपके कुल में आपको शर्म नहीं लग रहा है, इतने बड़े कलंक आप कुल में कैसे, आप उदय कैसे होंगे, काल प्रातकालीन आप सूर्य भगवान उदय होंगे, सारे दुनिया को ये पता चलेगा कि राम राजा होने वजह से जंगल चला जाएगा, आप सहन करेंगे, आप कलंकित नहीं होंगे, आपके कुल के रघुकुल तिलक इस सूर्यवंशी में इतने बड़े कलंक आप कैसे सहन करें, उनको भी दोष देते थे। बोले रात रात हो जाता हो, दिन होते ही सब लोग मांगल के द्रव्य लेकर के रेडी हैं करने के लिए। सचमुच सोचा जाए, कभी आप लोग को विचार करके देखिए, हम हमेशा गाते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहसु दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ का अंगन मुझे बोलते वही समस्त मंगल को देने वाले, मंगल के भवन है, समस्त मंगल को हरण करने वाले। लेकिन उन्हीं के जीवन के जो प्रथम दिन, प्रथम रात्र उनके अभिषेक का दिन था, दी ओपनिंग डे था, कितने बड़े चक्रांत से विपरीत हो गया, ये क्या मंगल था, आपको कैसे लगता है, ये अमंगल था या मंगल था, हाँ सुना नहीं पड़ता, मंगल था अमंगल था, तो कैसे अमंगल हारी है, फिर मंगल भवन कैसे है, आप हमेशा कहते हैं वही अमंगल भवन है, अरे उन्हीं के लिए कैसे अमंगल हो गया, इसके बारे में सब कोई सोचे नहीं ना। सचमुच आपको भले लगे, संपूर्ण नर नारी अयोध्यावासी को भी लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन वास्तविक अमंगल नहीं था, भगवान हमेशा मंगल भवन है, वही मंगल था, महामंगलमय काम था वो। अगर आज भगवान के इस वनवास का नहीं होता, आज रावण बद्ध होता, असुर निधन होता, फिर कैसे मंगल हो सकता, तो भगवान का कार्य मंगल है। आज वो रात वही रात हुआ, तभी तो असुर निधान हुआ, भले थोड़ा लेट में समझ में आए, लेकिन है वही मंगल। ऐसे कहते हैं कि भगवान नारायण रूप में हमेशा विराजमान है, जब महाविष्णु रूप में आपने रहते हैं, भगवान शेष सैया के ऊपर शयन करते हैं, और गर्भ सागर में, कारण सागर में सोते रहते हैं भगवान हमें से अनंत सैया, विराट अनंत से इसके ऊपर भगवान जोग निद्रा में स्वर्ण सहन करते हैं और भगवती लक्ष्मी उनके प्रति सम्मान करती है। एक दिन माता लक्ष्मी ने पूछी प्रभु से, प्रभु एक बात मुझे बताना है। देवी बताइए क्या कमी आप, ना बताऊं ना, मेरा एक समस्या है, एक दुख है मुझे, आपको दुख है, आप क्या कमी है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी, ये चराचर संसार में जितने मेरे भक्त हैं, सेवक हैं, सबसे ज्यादा सेवा के सौभाग्य आपको मिला है, मिला ना नहीं ना, वो तो आपके बड़ी कृपा है, मैं तो आपके चरण साथ सानिध्य छोड़ती नहीं, मैं हमेशा आपके पास में रहती हूँ, आपके पद सम्मान आदि, आपके तांबुल आदि सेवन भोजन आदि सब कुछ, मैं आपके पत्नी के शत्रु सब प्रकार से सेवा करती हूँ, सबसे ज्यादा सेवा से होगा मुझे ना, फिर अब फिर क्या कमी हुआ ना, आप अगर इतराज ना कर बताओ ना, बताओ फिर क्या कमी है आपका, सबसे ज्यादा सेवा के अपॉर्चुनिटी में आपको देता हूँ, फिर भी आपकी कमी है ना। कमी यही है कि सेवक तो बहुत है, लेकिन मैं आपके ऑर्डिनरी सेवक नहीं हूँ, मैं आपके अर्धांगिनी भी हूँ, मैं आपके धर्म पत्नी भी हूँ ना, कौन मना करता, मैं तो स्वीकार क्यों, आप मेरे धर्म पत्नी है, मेरे अर्धांगिनी है ना। प्रभु एक अर्धांगिनी होने के नाते, धर्म पत्नी होने के नाते सेवा तो करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या है ना, थोड़ा प्राइवेट सेवा नहीं मिलता है, अलग से हट करके मैं आपके साथ जो बात करूं, आपको थोड़ा सेवा करूं, पत्नी हमेशा ही चाहती है ये इतने लोगों के सामने, ये थोड़ी बनता है, ये तो पब्लिक सेवा है तो एक होता है, लेकिन एक अलग से है ना, अलग से पति पत्नी के लिए सेवा का व्यवहार जो बातचीत, ये चांस मुझे नहीं मिलता है, और कौन आता है मेरे वैकुंठ में, महावैकुंठ भुवन कोई नहीं, मेरे अनंत सज्जा पर केवल मैं हूँ, आप ही हैं, और कोई नहीं है, फिर भी आपको इसमें मन नहीं भरता ना। प्रभु आप तो बोलते हैं कि एकांत में आपके बेडरूम में मैं हूँ और कोई है ही नहीं, लेकिन प्रभु सच उतना बोलो ना, आप तो मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूँ, लेकिन मैं वो भी कुछ देखता हूँ, क्या देखता हूँ, अरे हजारों आंख मुझे और देख रहा है, कौन ये शेषना दो आंख भी नहीं उसका, इतने आंखें मुझे देख रहा है, मैं बात कैसे करूं खोल करके। अब आप जब लिखा होगा यू आर वॉच्ड ऑन सीसीटीवी, आप समझ जाएंगे, अब जैसे बातचीत करना था, व्यवहार करना था, डर जाएंगे ना। तो माता लक्ष्मी कहते हैं कि हजारों सीसीटीवी लगा हुआ है आपके पीछे से, सब तैयार देख रहे हैं, तो मैं कैसे एक पत्नी की तरह आपसे व्यवहार कर सकूंगी, कैसे बातचीत कर सकूंगी, सब देख रहे हैं मुझे, दिन रात तो बंद नहीं होते, हमेशा आप कहीं बैठिए। भगवान बोले मैं बेड चेंज करूँ ना, बेड चेंज करना पड़ेगा ये बेड गड़ा खतरनाक है, ये बेड में पहले से फिट है, हजारों आंख हुई उसमें क्या करूँ। तो भगवान नारायण बोले देखो देवी लक्ष्मी, इसी समय में इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं बेड चेंज कर नहीं सकता हूँ, अभी यही मेरी व्यवस्था है, बेस्ट अरेंजमेंट यही मैं करता हूँ, तो इससे संतुष्ट नहीं है ना, अब मैं बाध्य नहीं करती, लेकिन मैं एक प्रार्थना करती हूँ, एक पत्नी होने के नाते कभी हम मुझे एक अवसर ऐसा होना चाहिए जो एकांत में मैं आपके साथ थोड़ा बैठूं, बात करूं, सेवा करूं। बोले ये एकांत पसंद है, एकांत कैसे इतने सारे देख रहे हैं। तो भगवान बोले चलो अभी इसी कल्प में, इसी समय में मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, भविष्य में आपके लिए आपके मनोवांछा पूर्ण करूंगा, न कब न भविष्य में, कभी तृतीया युग में मैं जब राम रूप में आऊंगा तो तू मेरी पत्नी के रूप में सीता रूप में आएंगे, आप तभी एकांत में आएंगे, हाँ कुछ व्यवस्था करेंगे, हम दोनों ही रहेंगे, अब जंगल फंगल चले जाएंगे, कोई एकांत में रहेंगे, भवन में नहीं रहेंगे, लेकिन तभी भी वो आएंगे, बेड भी तभी भी आएंगे, लेकिन दूसरे फर्म में आएंगे, वो बेड तभी भी आएंगे ऐसा नहीं कि वेड़ नहीं आएंगे, लेकिन वेड़ आएंगे छोटे भाई बनकर के आएंगे, तो उनको हम देवर है तो अपना कर दूर रहेंगे चलेंगे। तो इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान उनको वचन दिए थे, इसलिए भगवान राम अवतार लिए और भगवती सीता को अपने पत्नी के रूप वरण किए, वही महालक्ष्मी है। जब विवाह करने के बाद मिथिला से अयोध्या आए, अयोध्या में जब प्रवेश हुआ, रानियां तो नहीं गई थी, बाकी सब लोग गए थे बारात में, लेकिन रानियां लोग नहीं गई थी। जब शादी हो करके पुत्र पुत्र वधु आए, तो एक होता ना आजकल मुंह देखने में, मुंह देखा होता ना, कुछ देना पड़ता है गिफ्ट देकर मुंह देखने। तो ऐसे ऐसे कई कई देवी ने मुंह देखने के लिए एक सोने के भवन दे दिए थे उनको, गोल्डन हाउस कनक भवन, जिसमें श्री सीताराम रुकते थे, ये उनके मुंह दिखाई दिए थे उन्होंने, और इसे से अद्भुत दिया गया। जब उन्होंने भगवान राम सीता के साथ अयोध्या में रुकते थे, तब अनेक लोग आते थे मिलने के लिए, क्योंकि केवल राम तो इतने मंगल थे, अब सीताराम को जब हो गए तब तो लोगों का तांता ही नहीं छोड़ा। तब सीता जी बोली, ये क्या है, आप मैंने वचन दिए थे कुछ प्राइवेटली, हमने ही व्हाट इज दिस, मुझे शादी करके लाए भी, फिर भी इतने भीड़ भाड़ ये कनक भवन के अंदर कभी। भगवान बोले व्यवस्था करते हैं, हम जल्दी करेंगे व्यवस्था, कुछ प्राइवेसी का व्यवस्था करते हैं। ठीक कुछ ही दिन के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि भगवान के राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक होगा तो वशिष्ठ जी दौड़ करके आए राम भवन में, आकर भगवान राम को सीता जी को बताए कि देखो काल सुबह प्रातः काल में आपका अभिषेक होने वाला है, आज से व्रत धारण करो, केवल फलाहार करना, ये नीति करना, ये नियम रखना, इस प्रकार स्नान करना, ये वस्त्र पहनना, एवं सारे कई नीति नियम आदब कायदा बता करके गए, आज प्रकार ऐसे बिताओ कि काल सुबह आपके महापूजा होगा, इस समय मांगल्य की पूजा होगा। अब कह करके वशिष्ठ जी अपने कार्य में चले गए, वो व्रत धारण करके पहले दिन से बैठे हैं। अब रात्रि के तृतीय चतुर्थ प्रहर में सुमंत जी आकर बुला रहे हैं, चतुर्थ मंत्र मंगल ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुमंत जी आकर बुलाए कि पिताश्री आपको बुलाना चाहते हैं, महाराज मिलना चाहते हैं। भगवान राम बोले, पिताजी को क्या हुआ, अभी तो मंगल मुहूर्त आ गया, अब तो मेरा पूजा के टाइम आ रहा है, हम सब व्रत धारण के सुबह स्नान धारण कर चुके हैं। तो जाते हैं कैकेयी भवन में, वहाँ जा कर के आप जानते हैं, इसे डिटेल हम नहीं बताएंगे, जहाँ मिलने के बाद में जिस दशा वो देखे उन्हें पिताश्री के, क्या क्यों क्या दिक्कत है पिताजी बताइए, दशा तो राम को देख करके दोबारा मूर्छित हो गए। कैकेयी महारानी बोले, वो क्या बताएंगे, वो बोलना नहीं चाहते हैं दुख के मारे, अब बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बात ऐसा ऐसा है वो कहना चाहते, कैकेयी नहीं बताया। भगवान राम बोले, माँ आप ये सामान्य बात के लिए आप मुझे कह सकते थे कि आपके विश्वास नहीं कि मैं आपके वचन पालन नहीं करूँगा, आप पिताजी को इतने कष्ट क्यों दिया, आप ही कह देते मैं चला जाता, उसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं आपके बात को कभी अवकट नहीं कर सकता। जो भी हो अभी आप कहते हैं पिताजी की सत्य है, आप भी कहते हैं मैं जाता हूँ, नहीं 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 जाना तो है, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले चला जाना है, सुबह नहीं होने, सुबह होने से पहले निकल जाना है, जितने जल्दी निकल जाना है, और इस प्रकार वनवेश धारण करके जाना है। राम बोले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जाऊँगा मैं, लेकिन इतना ही मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जा कर के माँ से एक बार मिलकर आ जाऊँ, परमिशन लेकर ना जल्दी करो जाओ माँ से बता। अति मंगल मुहूर्त प्रातः बेला में आज श्री कौशल्या भवन में आधी रात से दावत चल रहा है, कितने बड़े बड़े ऋषि जोगिंद्र मनिंद्र ब्राह्मण लोग को बुला करके कौशल्या माता भंडारा कर रही है, क्या क्या बांट रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, आज सुबह सुबह उनके राम का अभिषेक होगा, इसलिए कितने आनंद उत्सव चल रहा था। इस प्रात मुहूर्त में राम पहुंचे, उनको देख करके कौशल्या बोले, इस समय तो राम कभी आते ही नहीं, इस प्रकार से आते ही नहीं, मैं जानता हूँ बेटा को क्या हो गया। एक रत्न पलंग ला के दे दिए, रामभद्र बच्चे बैठो, मिष्टान लाकर दिए, हजार लोग खाते हैं, दान दक्षिणा लेकर जाते हैं, आप बैठो अपना प्रसाद पा लो, मुँह लगता है कुछ खाए नहीं, सुबह सुबह आए व्रत धारण किए होंगे, बैठो। माँ ने खुद, लेकिन भगवान बैठे ही नहीं आसन में, खाए भी नहीं, क्योंकि वनवास का आदेश हो चुका था ना, वनवासी इस रत्न आसन में बैठ नहीं सकता, वनवासी इसे राजभोग नहीं खा सकता, उस फलमूल कंद आहार है, वो तो घास के पत्ते पर बैठेंगे, रत्न आसन पर कैसे बैठे ही नहीं। माँ आश्चर्य हुआ, क्या बेटा हो गया। इसी समय में ऐसे मंगल, इतने सुख, इतने आनंद की उत्सव के समय में इतनी बड़ी घातक विषय बताना, फिर माँ को कितने बड़े रसाभास है, कैसे बता जा सके। हम लोग तो कभी भी नहीं ऐसा काम कर सकते हैं, ये भगवान भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी स्थिति में माँ के सामने स्पष्ट बोले कि माँ, बुरा ना मानना, पिताजी ने मुझे वनवास आदेश दिए हैं, वनवास। अरे राज्याभिषेक, राज्य वो भरत को मिलेगा, मैं 14 साल तक वन में जाऊंगा। कितने बड़े दुख हुआ कौशल्या माता को, कितने दुख हुआ, वो तो अटक गई, जड़ बन गई, लेकिन फिर भी भगवान सामने थे ना, वो तो सबके चित्त के चित्त हैं, उन्होंने उनको संभाल लिए, संभाल करके ऐसे मीठे मीठे वाणी से बात किए, इतने सुंदर भाव से बात किए कि माँ समझ गई, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन बहू को थोड़ा मिल लेना, बहू बोल करके जाना, बता के जाना। तो माँ के आग्रह से वहाँ से विदा लेकर के भगवान राम सीता जी से मिलने जाते हैं, कि एक कहना दे कि मैं तो जाऊँगा, अभी सुबह होते होते मैं निकल जाऊँगा, और आप जाके मिले भी। जब गए अपने भवन में, सीता जी तो तब से बैठते कहाँ चले गए, अब तब गुरु बुलाया था, जाना था, पूजा में बैठना था, साथ कुछ विशेष काम में था। जैसे भगवान राम आते हैं, बिल्कुल उनके मुंह देख करके कोई नहीं समझ पाएगा कि उनको कुछ दुख है करके, कितने महादुख भी भगवान को दुखी कर नहीं सकता, उनकी प्रसन्न बदन हमेशा प्रसन्न बदन रहता है। तो यहाँ तक कि सीताजी भी नहीं भान पाए कि कोई अघटन घटा है, लेकिन भगवान राम बिल्कुल ऐसे कोई मूड खराब कुछ ना आकर बोले, देवी ऐसा है, मुझे अभी जल्दी जाना है, समय नहीं मेरे पास, मैं आपके बताने के लिए आया हूँ कि मुझे वन में जाना है, पिताजी ने मुझे वन गमन का आदेश दिया है, मैं 14 साल तक वन में जाऊँगा। सीताजी सुन रही, खड़े होकर, क्या सब बदल गया, अभी अभिषेक होने वाला था, अभिषेक कुछ नहीं जाना है, नहीं ऐसा है कि अभिषेक मेरा नहीं होगा, ओ राज पिताजी ने भरत को देना चाहते हैं, भरत जी राज करेंगे, अब मैं अभी निकल जाऊंगा, मैं जा रहा, समय नहीं, मैं आपको ये बताने आया था कि कोई दिक्कत नहीं, आप रहो, आप देखिए मैं चले जाने के बाद में, पिताजी ऑलरेडी पीड़ित हैं, मैं देख कर आया, दुखी हैं, माँ भी बड़े दुखी हैं, तो आपके सास ससुर हैं, आप बहू हैं, ज्येष्ठ वधू हैं, तो आपके कर्तव्य होता है कि आपके सास ससुर की देखभाल करें, उनको ठीक प्रकार से सेवा पूजा खान पान करके उनको देखो, आपके धर्म है, कर्तव्य है, आपके धर्म पालन करो, बाकी सारे घर के आप मुख्य वधू हैं, श्रेष्ठ हैं, गृहलक्ष्मी ये सब करना। अब और ये भी बता देता हूँ कि भरत ऐसा अच्छा है, भरत इज वेरी नाइस मैन, अगर फिर भी भरत के साथ आपको जमता नहीं है, कुछ गड़बड़ होता है, मैं आपको एडवांस परमिशन देता हूँ, आप चाहो तो आपके पिताजी के यहाँ आप मायके में जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो थैंक यू, मैं जाऊं। इतने जल्दी से कह करके राम जाना चाहते थे, सीता जी सुन करके सब सुन ली चुपचाप। जब भगवान जाना जाने के लिए बोले, सीता जी बोले, प्रभु मैं देख रहे हैं कि आप बड़े व्यस्त हैं, आपका समय की कमी है, लेकिन क्या कुछ क्षण मुझे देंगे, मैं आपको बता दूं, आप मुझे जो बताए मेरे भी तो एक बार सुन ले, और सुनने का आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। इस स्थिति में मुझे मेरा आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आपको सुनना चाहिए ना, बताओ। तब सीता देवी बताने लगी, बोले हे प्रभु, आप क्या भूल गए जिस दिन मेरी माँ सुनैना ने विवाह के अवसर पर विदाई करते हुई, विदा देते हुए मेरा हाथ पकड़कर खींच करके लाई और आपके हाथ में देते हुए कही, बेटी आज से ये तुम्हारे हैं, आप उनके धर्म से उनके साथ रहना, कभी भी दुख में सुख में उनको नहीं छोड़ना, वही तुम्हारे कुछ है, कुछ दिक्कत आए ऐसे छोड़कर भागकर यहाँ नहीं आ जाना, हर प्रकार से उन्हीं को मान कर उन्हीं का होकर के रहना, उन्हीं के दुख सुख से रहना, यही तेरे धर्म है, यही शिक्षा देकर के आपको दे गए थे, और आप मुझे बताते हैं दिक्कत होगा तो मैं चली जाऊँ, मुझे माँ ने मुझे यही शिक्षा नहीं दी थी, और आपके साथ विदा की थी केवल आपके लिए दी थी। दूसरी बात है, आपके आदेश मेरे सिरोधार्य है, आप जो चाहते हैं मैं ही करना चाहूँगी, लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन आप जो बोल लें कि मेरा ये धर्म है सास के ससुर के देवर के देखभाल करना, घर के सब देखभाल करना, मैं ज्येष्ठ वधु के रूप में देखभाल करना, उनके मेरा धर्म है, मैं कर्तव्य करूँ, प्रभु ये सास है, ये ससुर है, ये देवर है, ये किसी के चलते हैं, मैं उन किसी को नहीं जानती हूँ, आपके चलते ये सास, आपके चलते ये ससुर, आपके चलते ये देवर, आपके चलते ये नगर, ये अयोध्या, सब केवल आपकी वजह से, मैं आपके होकर आई हूँ, आप नहीं रहे तो कोई नहीं है, तो आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, तो धर्म कैसे पालन होगा, धर्म कैसे पालन हो सकता है? भगवान रूप तो क्या कहना चाहते हो ना, अगर धर्म पालन करना चाहते हो तो एक पतिव्रता स्त्री के परम धर्म होता है अपने पति के साथ रहकर पति की सेवा करना, तो ये धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म मेरे लिए है, आप मुझसे इससे वंचित क्यों करना चाहते हो? न मतलब ना मैं आपके साथ जाना चाहूंगी, न जंगल में कैसे जा सकती है, तो जंगल की भयानकता को भगवान राम वर्णना करने लगे, इतने कष्ट है जंगल में, जाने का रास्ता इतना खतरनाक है, चप्पल भी नहीं पहनना होगा, कांटा है, पत्थर है, जंगल का भयानक हिंस्र प्राणी है, भूत प्रेत, बहुत भयानक स्थिति जंगल का वर्णन करने लगे। ये सब सुनकर के सीता जी बोली, ये जितने आप भयानक स्थिति वर्णन करते हैं ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो महामंगलदायी हो जाएगा अगर मैं आपके श्री चरण के साथ रहूंगी, अगर आपको छोड़ करके ये तुड़ितल पसज्जा, ये कनक भवन, ये अयोध्या के राजमहल मेरे लिए इसी दावानल से भी और भयानक ज्वाला होगा अगर आपसे विरह में रहूंगी, लेकिन आपके साथ ये जंगल के नाना प्रकार के उपद्रव है, जितने कष्ट मेरे लिए बहुत कुछ कष्ट नहीं होगा। इस समय में सीता जी ने बोली, बोले प्रभु ये मत सोचिए कि आप मुझे साथ लेकर जंगल में जाएंगे, बोझा बनकर रहेंगे, मैं भी जाऊँगा उसको क्या मेंटेन करूँगा, फंस गया मैंने उसको क्यों लेकर के आया, ऐसा मत सोचिए, मैं आपके ऊपर बोझा बन करके रहूँगी नहीं, बल्कि मैं आगे आगे चलूँगी, अग्रगामी सन्ति, ये श्लोक मैं आगे आगे जाऊँगी, आगे कैसे जाओगे, मैं आगे इसलिए जाऊँगी क्योंकि जो कुशकंटकान मणयंती कृष्णकंटकान, जो जो आप आगे आगे मैं चल करके रास्ते में जो कांटा कंकण पत्थर पुरसाद जो होगा उसको मैं मेरे पद से दलित पेशित करके सब सीधा साफ कर दूंगी, फिर आपके चरण कमल सीधा सीधा जाएगा, इसलिए मैं आगे आगे जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब वनगमन हुआ सीता जी तो बीच में चलती थी, भगवान राम आ गए, लक्ष्मण पीछे, बीच में सीता जी, ऐसे क्यों कहीं? वाल्मीकि रामायण में श्लोक आती है, अग्रहम गमिष्यन्ति मृणयन्ति कृशकण्टकान्, मैं आगे आगे चल करके आपके सारे जो कष्ट है कंटक है उसको सब दूर कर दूंगी। तो कैसे आगे आगे गई? सचमुच उसका अर्थ आचार्य लोग कहते हैं कि आगे इसलिए गई, भगवान की वन में जाने का जो मेन प्रोजेक्ट था, मुख्य उद्देश्य था असुर निधन, राक्षस निधन जो मुख्य उद्देश्य था भगवान के वनगमन का, इस राक्षस निधन में भगवती सीता ने पहले गई लंका में, भगवान तो बाद में गए। निशाचर वही से निशाचर को हीन करने का जो प्रोजेक्ट भगवान राम का था, इस प्रोजेक्ट में सबसे फर्स्ट स्टेप सीता जी ने ली। 14 माह तक अकेला जा करके एडवांस बुकिंग में लंका में रही, अशोक वाटिका में ये आगे गई भगवान के निष्कंटक करने के लिए। तो इस प्रकार सीता जी ने किस प्रकार वहाँ से वन गमन के लिए उद्यत होकर आई और किस प्रकार का मूड लेकर के आई थी, कितने दुख सहन करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आई थी। अब आकर के जब वहाँ पहुँचे भरद्वाज आश्रम में, अब यहीं से असली वन के शुरू होगा। अभी तक तो सुमंत जी रथ में लेकर आए थे, गंगा के पास से रथ वापस लिए, तमसा नदी तक पार करे थे, लाए थे, लेकिन गंगा पार नहीं किए, सुमंत जी को वहीं से वापस जाना पड़ा। यद्यपि सुमंत नहीं जाना चाह रहे थे, वो घोड़े भी नहीं जाना चाह रहे थे, बड़े मुश्किल से गए, लेकिन गंगा पार करके भरद्वाज आश्रम आए। तब कोई नहीं, यहीं से जंगल के असली शुरुआत होगा। जब वहीं से जंगल जाना चाहते थे, तब भरद्वाज ऋषि जो उनको कंसल्ट करके बताए कि यहीं से जमुना पार करके जाना होगा, जमुना के उस पर। हम लोग तो नैनी ब्रिज पार करके आ गए, लेकिन तभी कोई ब्रिज नहीं था, तभी जमुना का विशालता और भीषण था, बड़े भीषण रूप में जमुना जी बहती थी। क्योंकि जमुना जी जमुनोत्री से शुरू की और उनका रन इलाहाबाद तक है, उसके आगे जमुना का नाम निशान आईडी नहीं, इसके बाद गंगा ही है। तो इसलिए उनके लास्ट स्टेज में जमुना जी विशाल रूप धारण करके रहे। तो जमुना जी पार करने के लिए जब तीनों आए, जमुना जी के भयंकर रूप देख करके बोले, कैसे पार करेंगे? सीता जी तो बोले, मुझे तो तैरना आती नहीं, हम तो तैरना नहीं जानती है। तो दोनों भाई तैर सकते हैं, और वो नहीं तैर सकती है, और नौका तो है ही नहीं घाट में, क्योंकि गंगा जी में लोग बगाते हैं, यहाँ तो जंगल कोई लोग जाते ही नहीं, बिहड़ जंगल है। तब कहते हैं उन्होंने कुछ सूखे लकड़ी, कुछ पेड़ इसे काट कूट करके लक्ष्मण राम जाकर तोड़ करके लाए, एक भेड़ा बनाया, जानते नौका तो था नहीं, कई प्रकार सूखे लकड़ी से बांध बंद कर, रस्सी के से बांध करके इतने बड़ा बनाए जो पानी में डूबेगा नहीं, नौका नहीं है उसको भेड़ा बोलते हैं। तो उसी के ऊपर सीता जी को बैठा दिए, दोनों भाई दोनों तरफ से तैरने लगे, ऐसे ऐसे हाथ में चला लेते उसको पकड़ते, सीता जी ऊपर बैठी थी, इस प्रकार से पार कराए। दोनों भाई दोनों तरफ से उसको भला चला करके उसके ऊपर सूखे लकड़ी के ऊपर बैठा कर सीता जी को जमुना पार कराए थे। जमुना पार करा करके उस पार पहुंचे, बिल्कुल निर्जन जंगल शुरू हो गया, और जंगल के रास्ता पर चलते चलते गए, आगे चल कर के कोल भील लोग जंगल में रहते हैं, होते ना शेड्यूल जंगली लोग जो रहते हैं, वो लोग तो कभी, आजकल भी कोई ऐसे लोग गवर्नमेंट इतना सुविधा देता है तो कभी आते हैं नहीं, तो तभी जमाने तो कोई नहीं आते थे दुनिया, वो अपने जंगल के रहते थे, ना उनका ठीक से वस्त्र होता है, ना भाषा होता है, ना खान पान कुछ नहीं, पशु पक्षियों की तरह रहते थे, लेकिन रूप केवल मनुष्य का था, ऐसे ही रहते थे कोल भील, कोई संस्कार नहीं, कोई सभ्यता नहीं, इस प्रकार रहते थे। उन लोग जंगली प्राणी, जंगली मनुष्य वो देखे इन तीन लोग को जाते हुए, देख करके वो समझ नहीं पाए, बोले हम तो कितने जंतु जानवर देखते हैं, पशु पक्षी, ये कौन सा पशु नए आए जंगल में, पहले तो ऐसे हम देखे नहीं, उन बेचारों को क्या पता है, कोई पेपर पढ़ते हैं ना, टीवी देखते हैं, उनकी क्या पता क्या हो रहा है दुनिया में, उनको कुछ पता ही नहीं। जा करके उनके जितने कोल भल्ली के भील के बस्ती था सब हल्ला कर दिया, अरे जंगल में कुछ विशेष जीव आए हैं, पूरे गांव वाले जिनके चलने का था शक्ति दौड़ करके आए, सब स्त्री पुरुष बाल बच्चे सब दौड़ कर आए, सब आकर देखते थे, अरे हाँ तो सही है, क्योंकि भगवान राम की जो दिव्य रूप है वो तो अनोखा है। भगवान राम के रूप के दर्शन कितने कितने शिक्षित भद्र व्यक्तियों को नहीं प्राप्त हुआ। आज कोल भील जो कोई पढ़े लिखे नहीं, पापी जीवन बिताते हैं, हमेशा कोई खान किसी प्रकार की पवित्रता नहीं, आज उनको साक्षात बिल्कुल इस बिना पोशाक में चप्पल बिना पहले भगवान सामने साक्षात दर्शन होता है उन लोग का। तो उन लोग को कई गांव के प्रधान सब आ जाते हैं, सब मिलकर के बातचीत आपस में करते हैं, बोलते हैं कि अगर ऐसे सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर व्यक्ति, लगता तो है कि विधाता ने जो शरीर बनाया, जितने प्रकार शरीर विधाता ने बनाया, उनके पास जो मटेरियल था सारे मटेरियल उन्हीं में डाल दिया और कुछ बचा नहीं हुआ उनके पास। सारे अच्छा अच्छा मटेरियल लगा कर उनको बनाया, अरे इतने अच्छा रूप बनाया तो कोई पोशाक नहीं पहने, बलकल धारण किए हैं, कोई धोती नहीं, उत्तरी नहीं, अलंकार नहीं, तो ये वस्त्र बना किस लिए है? ऐसे रूप जो अगर वस्त्र धारण नहीं करेगा ऐसे मनुष्य, तो वस्त्र बनाए किस लिए? वस्त्र का उपयोगिता क्या है? ऐसे पुरुष अगर अलंकार धारण नहीं करे तो अलंकार बना किस लिए? ऐसे व्यक्ति अगर जूते चप्पल नहीं पहने, जूता चप्पल बना किस लिए? ऐसे धिक्कार करते थे तो कुछ लोग और बोले अरे मूर्ख कहीं के, अगर वो ऐसे बोले, वो बोलते थे कौन ऐसा माता पिता है जो इन जैसे पुत्र को, पुत्र रत्न को जंगल में भेज दिए, ये घर श्मशान हो जाएगा, ऐसे पुत्र भगा जा सकता है? ऐसे हाहाकार करते थे, आपस में बिड़ाप करते थे, तो कुछ वो गांव वाले बोले अरे मूर्ख कहें क्या मूर्ख ना, अगर कोई घर में रखते पोशाक पहना कर, अलंकार पहना करके घर में रखते, तेरे भाग्य में इस रूप का दर्शन होता ना, हे भगवान नहीं होता, ये तो हमारे महाभाग्य है, जिसने ये किया केवल हमारे लिए किया, जिसने उनको जंगल में भेज दिया केवल हमारे ऊपर महाकृपा करने के लिए भेजा, ये महामंगल हमारे लिए हुआ, भले उनके लिए क्या हो, नहीं तो हम तो जब से आंख उठा हम देखे नहीं, देख भी नहीं सकते थे, इतने सुंदर रूप हम सामने से देखते हैं, कितने कृतकृत्य होते थे देखते 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 देखते, सभी देखते थे, घर के काम दाम छोड़कर उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ते थे, किसका मन नहीं करता था उनको छोड़कर जाने के लिए। कुछ कुछ स्त्रियां होते हैं उनका एक स्वभाव होता है बातचीत करने में, वो देखते हो थोड़ा पीछे, पुरुष लोग थोड़ा सामने तक चले जाते हैं, स्त्रियां थोड़ा पीछे पीछे देखते हैं, देख करके मार के बोले देखो दो पुरुष हैं, एक से बढ़कर के एक सुंदर रूप है, और एक जो स्त्री बीच में जाती वो भी कुछ कम नहीं है, वो महासुंदरी है, लेकिन क्या रहस्य है? दो लड़के हैं एक लड़की है, क्या बात है? दो लड़की होना चाहिए, अगर गर्लफ्रेंड है तो दोनों होना चाहिए, ये क्या है? कोई फिट तो बैठता नहीं, दो के बीच में फिर चलता है, आगे कौन है पीछे कौन है, उनके मन में अधड़ गुण चलने लगा, कैसे पता लगा कैसे जाने, शर्म करती थी पूछने के लिए, ऐसे करते करते पुरुषों के सामने ही बात पूछ भी नहीं सकती है, और कैसे पुरुषों की जब पूछें कैसे, तो बहुत देर तक उनके पीछे पीछे स्त्रियां चली। अब कुछ देर तक जब पुरुष लोग ने कही भगवान राम से बैठने के लिए, प्रभु यहाँ बैठिए हम कुछ व्यवस्था कर दें, कुछ फल लाएं, लक्ष्मण के पास कुछ चले गए, बीच में स्त्रियां देखिए वो थोड़ा फारिक है, सब चले गए सीता जी के पास, जा करके उनको उन्होंने उनके जंगली भाषा में उनकी भाषा जैसा होगा बोलने लगे, उनको सम्मान करके बोलने लगे, और देवी बोलते होंगे क्या बोलते होंगे पता नहीं, जो बोलते होंगे उनके वैसा भाषा में बोलने लगे कि जी ये आप कैसे, ये दोनों आपके कौन लगेंगे, ये दोनों आपके क्या होंगे, आप अकेली है, ये दो हैं, क्या रहस्य है, ये आपके कौन संपर्क है, कैसे आप आए, जो पूछने लगे। अब सीता जी देखी होगी इतने सरल स्त्रियां हैं, कितने सरल है, कितने दूर से मेरे पीछा करते हैं और पूछ नहीं पा रहे हैं, अभी सुजोग देखकर मुझे आके पूछना चाहते हैं बड़े उत्साह से, मैं उनको कैसे बताऊं, अगर मेरे पति का नाम तो मैं ले नहीं सकती हूँ। देखिए तभी भी ये नियम था कि आज भी ये नियम है समाज में, कोई विवाहित स्त्री अपने पति का सीधा नाम नहीं लेती, इनडायरेक्टली बोले कि भले नहीं लगी, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं ये कौन है बताओ। तब सीता जी ने उनको बोल दी है कि ये दोनों से मेरा नाता है। ना क्या नाता है, ना ये जो पीछे आ रहे हैं ना बड़े सुंदर रूप में, ना हाँ ना वो मेरे देवर हैं और वो उनके भाई हैं। समझ गए ना क्या बताई, किस प्रकार से प्रॉपर सिम्टम से बताए कि कोई दिक्कत ना हो गए और उनको समझ जाएंगे। स्त्रियां समझ गई कि ये जो पीछे आ रहे हैं वो मेरे देवर है और आगे जो जा रहे हैं उनके भाई हैं। समझ में आ गया कौन क्या है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल के सीधा नाम बता देंगे वो, ऐसे नहीं। इस अवस्था में भी उन्होंने जो नियम है समाज की संस्कृति उसको पालन करते थे, इस प्रकार बताते थे। इस प्रकार से पूरे वन के जितने कोल भील समुदाय है सब भगवान भगवती के साथ साथ चलते हैं। उनको कौन सा घर में घाटी में, वो तो जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे में बिताने वाले, लेकिन इतने सुंदर रूप के साथ कुछ तो उनको मौका मिल जाए। तो वर्णन आता है केवल उनके साथ में चलते चलते उनके रूप को देखते देखते जो बिल्कुल अनपढ़ गवार हिंस जंतु के साथ रहते रहते बड़े हिंस प्रकृति वाले कोल भील भी इतने सुधर गए, इतने संस्कारित हो गए। आगे चलकर सुनेंगे उनका क्या स्वभाव हो गया, उनका स्वभाव भी बदल गया। इस प्रकार से पार करके श्री सीताराम लक्ष्मण जमुना पार करके नमः शरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब काल प्रवेश कराएंगे क्या क्या फिर कैसे करते हैं, क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम से एक दिन और बाकी है। आज आप संगम में स्नान किए, पुरुषोत्तम मास का अंतिम कड़ी पर लास्ट बट वन डेज में आप बहुत बड़े विशेष पुण्य कर्म किए, विशेष बड़े तीर्थ में स्नान करके आए, और कल आप मंदाकिनी स्नान शायद करेंगे, करना चाहिए, पास में ही है। रामगंगा से राम घाट जाओ ना तो पीछे ही घाट जाओ, कहीं कर सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में आपको पता है हम पूरे महीना में भगवान की एक एक्स्ट्रा स्तुति करते हैं, तीन प्रार्थना गाते हैं पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री चौराष्टकम और पुरुषोत्तम योग और जगन्नाथ अष्टकम। तो जब मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब बैग में था तभी भी हम गाते थे, और प्रतिदिन सुबह आप भगवद्गीता पढ़ लेते थे, शाम को बाकी दो करते थे। तो जब दो दिन है हम धाम में है, क्यों ना उसको पूरा कर लें। दो दिन तो है, फिर तो तीन साल के बाद चांस मिलेगा, फिर मिलेगा कि नहीं क्या पता, तीन साल के बाद हम कैसी स्थिति में होंगे क्या पता। तो आज के अपॉर्चुनिटी को सुवर्ण से क्यों खो दें, है ना नहीं। तो अगर आप एतराज़ ना करें तो इस दिनों को पाठ कर लें, और कल लास्ट है, कल भी कर लें, फिर बात तो छुट्टी है ना नहीं। हरे कृष्ण।